आज विशेष अभी हमने शिलुवेन को अनुरोध किया कि कुछ आपके दो तीन प्रश्न हमारे पास आए हैं। तो एक प्रश्न ये है कि अतीन्द्र सुख का अनुभव क्या होता है, अगर आप उसको समझाएं तो हमें मदद मिलेगी, तो एक प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये था कि हम तो बिजनेसमैन हैं या हम तो प्रवृत्ति में रहते हैं, काम तो हमको करना है, और फिर बेहद के वैराग की बात करते हैं। मैं समझती हूँ सुबह की क्लास में भी थोड़ी सी ये बात निकली थी, शुरू में नहीं, लगभग मैं समझती जहाँ तक मुझे याद है वो सुना रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसका व्यवहारिक स्वरूप बेहद का वैराग क्या होता है। ये इच्छा है कि कहा कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हम बेहद के वैरागी कैसे बन सकते हैं। तो एक ये भी सवाल था, इसको अगर अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और तीसरा प्रश्न मेरे पास एक और आया था कि निर्मलता और कोमलता दोनों में क्या अंतर है। तो ये तीन प्रश्न हैं, और यदि आपके मन में कोई और स्पष्टीकरण जो आपने क्लासेस में सुना अगर कुछ चाहिए तो आप शिलू बहन जी से पूछ सकते हैं। मैं समझती हूँ अभी इन तीन प्रश्नों का उत्तर जो है शिलू बहन जी अवश्य देंगे।
ओम शांति। तो पहला प्रश्न था अति इंद्रिय सुख किसे कहते हैं, इंद्रिय सुख किसे कहते हैं, पहले ये तो समझा है ना। इंद्रिय सुख का अपोजिट हो गया अति इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख किसे कहते हैं, इंद्रियों का सुख, एक एक इंद्रिय से जो अल्पकाल का सुख मिलता है वो इंद्रिय सुख, कोई चटपटी चीज खा ली, खट्टी तीखी मीठी, वाह 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 बड़ा आनंद आ गया, मजा आता है, मजा सी भी करेंगे और खाते भी जाएंगे, कितनी मिर्ची होगी तो भी खाएंगे, खट्टी भी होगी फिर कॉम्बिनेशन होता है तो और भी मजा आता है, उधर खट्टा भी लगता है, मीठा भी लगता है, तीखा भी लगता है। तो ये इंद्रिय सुख हुआ, जीव का सुख। फिर आंखों का सुख, कोई दृश्य देखते हैं बस देखते ही रहे देखते ही रहे देखते ही रहे, आंखों को सुकून मिलता है। या कई लोग बहुत जल्दी जल्दी टीवी देखते हैं ना, फट 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 सीन बदलते रहते हैं, क्योंकि एक ही सीन होगा तो बोर हो जाते हैं, तो क्या चाहते हैं जल्दी 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 एक एक सेकंड, सेकंड से भी कम सीन बदलते जाए बदलते जाए बदलते जाए, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भी आंखों का सुख है। दो मिनट क्या हुआ, मुझे लगा सारे नौ का गीत हो जाए। फिर तीसरा कान, कन रस, ये सब इंद्रियों के रस है। कोई गीत पसंद आता है, वाह कितना अच्छा लगता है, बस सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, उस गीत का ही सुख ले रहे। फिर कई तो इतना उनको अच्छा लगता है, इतना जोर से चलाते हैं तो क्या होता है, कान ही फट जाते हैं, वो आंखों के सामने वही वही बार 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 दृश्य बदलते हैं तो आंखों को नुकसान होता है। जीव रस के पीछे हम जो भी कुछ करते हैं तो कई बार तो जीव ही जल जाती है ना, अंदर जितना जलता है वो तो पता नहीं, लेकिन जीव तो स्वाद को लेकर के हम उसके पीछे रहते हैं। और फिर नाक का भी होता है गंध रस, बस सूंघने की इच्छा, हर चीज को सूंघते रहेंगे, बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आता है, उसकी सुगंध अच्छी लगती है। कई प्रकार की इत्र होते हैं, कई प्रकार की एसेंस होती है, तो बस उसका वो बड़ा सुख लगता है। और पांचवा है स्पर्श रस, गुदगुदी होती है अच्छा लगता है ना, हाथ लगाना अच्छा लगता है। अब ये इंद्रियों के जो रस है ना, ये धीरे धीरे विकार का रूप बन जाते हैं। ये पांच विकार जो है ना, ये इंद्रियों के रस से ही उत्पन्न हुए हैं। काम वासना क्या है? ये चर्म स्पर्श है, चमड़ी को स्पर्श करना होता है, ये काम वासना है तो इंद्री चर्म चमड़ी का सुख है, और तो कुछ नहीं है। इसका छोटा सा रूप है कि किसी चीज को हाथ लगाना। देखो आप म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए ना, लिखा रहता एक एक जगह जगह लिखा था कृपया हाथ मत लगाइए। परंतु अगर मान लो वो खुला है तो हाथ मत लगाइए, पढ़ेंगे भी और हाथ लगाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे और हाथ भी लगाते जाएंगे। क्यों हाथ लगा रहे हो भाई, लिखा है मत हाथ लगाओ, अब उठाना तो है नहीं, नहीं तो चोरी मानी जाएगी, अगर उठाना है तो और बात है, उठाना तो है नहीं तो हाथ क्यों लगाना है। लेकिन ये स्पर्श रस आकर्षित करता है, और उसी का ही विकराल स्वरूप क्या है स्पर्श रस का, काम वासना। इसी प्रकार देखो आंखों का रस, देखते ही रहना देखते ही रहना, तो गुस्सा कई बार होता ना, वो चीज अच्छी नहीं लगती तो भी उसको घूर के देखते हैं, कई लोग घूर के देखते हैं और अंदर में गुस्सा है, तो गुस्सा सबसे पहले कहाँ से निकलता है? मुख से तो बाद में निकलता है, पहले कहाँ से निकलता है? आंखों से निकलता है। तो मानो क्रोध का जो रूप है वो उसका शुरुआत कहाँ से होती? आंखों से। वास्तव में सब विकार आंखों से शुरू होते हैं, लेकिन फिर भी क्रोध को हम विशेष रूप से मानेंगे वो आंखों से। फिर लोभ, लोभ किसको कहेंगे? वो उसका कौन सा इंद्री, कौन सी इंद्री है? जीभ, जीभ रस। तो जीभ रस है लोभ का स्वरूप, धीरे धीरे वो लोभ का रूप बन जाता है। पेट में जगह भी नहीं होगी, बस और खाओ खाओ खाओ। वो दिखाते ना चुटकुले सुनाते हैं कि वो ब्राह्मण लोग धामा खाते ना, तो खूब खाया खूब खाया खूब खाया, तो एक व्यक्ति तो इतना खाया पेट इतना भर गया, तो किसने कहा, वो उठ ही नहीं सकता था, तो किसने कहा ये हाजमोला है ना, आपका भोजन हजम करेगा, वो खा लो। तो कहते अरे उसकी भी जगह होती तो लड्डू नहीं खा लेता। हाजमोला खाने की जगह नहीं, इतना भर गया है, लड्डू चाहिए। तो इसीलिए ये लोभ जीव रस। फिर मोह कौन सी इंद्री का चरम स्वरूप है? नाक। जिससे जिसमें मोह होता है ना, उसकी उस दिल होते में उसको पकड़े रखे, उसको सूंघते रहे। कुत्ते को भी, कुत्ते से भी बहुत प्यार है, जिससे प्यार मानो उसको सूंघते रहे, तो ये मोह की निशानी है। तो इसलिए ये नाक जो है ना, ये मोह बना, मोह को दर्शाता है। और फिर अहंकार कान, किसने मेरे लिए कुछ कह दिया, ओ क्यों कहा, तो कान खुले रह गए एकदम। तो इसीलिए अहंकार का, अहंकार चरम स्वरूप किस इंद्री का है? कान। ये क्यों कहा मेरे लिए, तो कान खड़े के खड़े रह जाते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह ये इंद्रियों का के आकर्षण का ही स्वरूप है। और बाबा हमें क्या कहते हैं, इंद्रिय जीत बनना है। तो कैसे बनेंगे इंद्रिय जीत? आत्मिक स्थितियों, देही अभिमानी स्थितियों, इन पांच इंद्रियों के आकर्षण से परे रहो। चर्म स्पर्श का भी आकर्षण नहीं है, हाथ नहीं लगाना तो हाथ नहीं लगाना, दूर से देवियों को दिखाते ना आशीर्वाद दे रहे, वरदान दे रहे, ये दूर से। ये हाथ किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, ये हाथ किसी को आशीर्वाद भी देंगे। तो ये हाथ आशीर्वाद दे या थप्पड़ मारे? आशीर्वाद दे, वरदान दे। तो इसीलिए बाबा ने हमें अति इंद्रिय सुख कैसे किस रूप में दिया है, इंद्रियों से परे का सुख, माना इंद्रियों के आकर्षण से परे। मुझे वही सुगंध चाहिए, मुझे वही दूध चाहिए, वही टेस्ट चाहिए, वो टेस्ट नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे वही सुनना है, वही पहनना है, वही चाहिए, उसी का ही मुझे सुख मिलेगा। बाबा कहते नहीं, जो भी मिले, जैसे भी मिले, सबको स्वीकार करना है, क्योंकि मुझे बाहर का सुख की बात ही नहीं, अंतर में जब बाबा ने इतना सुख भर दिया है तो बाहर का सुख तो फीका लगता है। दुनिया में लोगों को बाहर का सुख चाहिए, फिर उसमें जल्दी बोर भी हो जाते हैं ना, क्योंकि जो इंद्रियों का सुख है ना, उसमें डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, और शैलो है। जैसे कोई पानी हो बिल्कुल शैलो, गहरा न हो, तो इंद्रियों का सुख गहरा नहीं है, इसलिए जल्दी बोर हो जाते हैं। वही 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 गीत आपको वही 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 सुनाओ, क्या क्या बहन जी, एक ही गीत है क्या आपके पास, वही वही कपड़ा पहनो। इसलिए कई लोग होते हैं ना, रोज कपड़ा चेंज करेंगे, ड्रेस चेंज। हम कई बार हंसी में सुनाते हैं कि कई माताएं इतना समझो, अभी वही साड़ी चाहिए, वैसा ही कलर का ब्लाउज चाहिए, वैसी पर्स चाहिए, चलो एक दिन तो खूब अच्छा लगा, फिर दूसरे दिन भी समझो वही किया, तो लोग कहेंगे आपको क्या एक ही साड़ी है, भले मैचिंग है सब कुछ, पर वही दोबारा दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही साड़ी, वही ब्लाउज, तो लोग क्या कहेंगे, ये एक ही इनके पास साड़ी है क्या। अब हम लोग तो सफेद ही पहनते, अब दो तीन दिन पहना तो क्या फर्क पड़ेगा, किसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि दो दिन भी हमने वही साड़ी पहनी है। तो परंतु दुनिया में तो कितना उसका शो होता है, तो चेन चाहिए, अलग डिजाइन चाहिए, अलग ये चाहिए, अलग फैशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो चेंज, क्योंकि वही वही होगा तो बोर हो जाते हैं, वही वही देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो हम तो वही देखते हैं तभी बोर नहीं होते हैं, होते हैं क्या हुँ? कोई कहे यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम कहते नहीं, हम तृप्त आत्मा है, आत्मा भरपूर है। तो जब अंदर से भरपूर है ना, तो बाहर का आकर्षण लगता नहीं। तो इंद्रियों का आकर्षण का मतलब है अंदर में खाली है, इसलिए कहते हैं ना, अंदर से हम भरे हुए हैं तो बाहर हमें देखने की भी जरूरत नहीं। हम तो कई बार मम्मा का मिसाल देते, रमेश भाई और निर्वैर भाई मिसाल देते हैं कि एक बार मम्मा को कहीं ले गए बॉम्बे में, मम्मा को कार में ले गए थे, तो उस समय ना ये बॉम्बे में कलकत्ता में भी होंगे बड़े बड़े लाइट के साइन बोर्ड्स ना, बड़े बड़े लाइट नियॉन साइंस चमकती हुई जगमगाती हुई, बहुत आकर्षक, तो बहुत बहुत ही आकर्षक। रात के समय मम्मा को ले गए कार में, तो जब वहां से बहुत एक आकर्षक कुछ होर्डिंग था, तो वहां से गुजर गए, तो रमेश भाई ने मम्मा से कहा, मम्मा आपने वो देखा? मम्मा ने कहा क्या? कहा मम्मा वो कितना अच्छा था, हम भी ऐसे बना सकते हैं, अपने सेंटर के आगे भी ऐसा बना सकते। मम्मा कहते क्या? तो रमेश भाई ने कहा मम्मा वो बहुत अच्छी होर्डिंग थी, एडवर्टाइजमेंट था किसी का। तो मम्मा ने कहा मैं तो कुछ देखती नहीं हूँ मैं तो कभी ऐसे 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 घुमा करके देखती नहीं हूँ, तो इसीलिए आपने जो कहा वो तो हमने कुछ भी नहीं देखा। खैर, परंतु उस निर्वैर भाई सुन रहा था, तो उसने अपना अनुभव सुनाया कि मम्मा से हमने ये बहुत अच्छी बात नोट की कि मम्मा अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करती थी, इधर उधर की बातों में यहाँ वहाँ देखना, ये मम्मा जब भी चलती थी जैसे आंखें नीचे ना, ये मम्मा की विशेषता थी, जो बोलना है उचित वही बोलना, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, मम्मा ने पूरा पाठ पक्का किया था, जो जो आवश्यक है बस उतना ही बोलना, जहाँ 10 शब्द की बजाय 4 शब्द से काम हो सकता है तो 8 भी नहीं कहना, ये मम्मा की विशेषता, गंभीरता थी बहुत। तो कहने का भाव है कि इंद्रियों का सुख और उसके कंपैरिजन में अति इंद्रिय सुख, तो इंद्रियों से परे, अतीत कहो इंद्रियों से परे है, क्योंकि आत्मा उसका सुख लेती है। मनुष्य आनंद शब्द जो है ना, आनंद ये बड़ा ये आध्यात्मिक शब्द है, लेकिन लोग उसको इंद्रियों के अल्पकाल के सुख में बदल देते हैं। चटपटी चीज खाएंगे कि आनंद आ गया, ये पिक्चर देखी ना आज बड़ा आनंद आ गया, ये पिक्चर देख करके ये गीत सुना बड़ा आनंद आ गया, हर चीज में आनंद 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 कोई इतना मामूली शब्द नहीं है। आप देखेंगे जितने भी संत महात्माएं गुरु लोग उनके जो नाम होते हैं ना, उन सब के पीछे अंत में आनंद होता है। सच्चिदानंद स्वामी, सत्यानंद स्वामी, शिवानंद, विवेकानंद, धर्मानंद, सदानंद ये भी एक शब्द था, और कई नाम है, दयानंद, नित्यानंद, सब बहुत सारे उनके अंत में आनंद। तो मानो सत्चित आनंद जो सत्य है, जो चित है उसका जो आनंद है, धर्मानंद धर्म का आनंद है, प्रेमानंद प्रेम का जो आनंद है, विवेक से जो आनंद मिलता है, और सबसे ऊंचा आनंद कौन सा है, परमानंद परमात्मा का आनंद। जब परमात्मा के रस में हम डूबे हुए हैं, उस आनंद की भेंट में बाकी सब आनंद फीके। इंद्रियों में भी हम देखते हैं ना कि जो टेस्ट है, टेस्ट टेस्ट में भी वैरायटी होते हैं, परंतु सबसे जो चरम टेस्ट है, जिस टेस्ट के बाद दूसरी टेस्ट फीकी लगती है, वो मिठास ना। इसलिए मीठा हमेशा खाएंगे तो कब खाएंगे, लास्ट में खाते हैं। तो लास्ट में क्यों खाते हैं, पहले भी तो खा सकते हैं ना, लेकिन लास्ट में क्यों खाते हैं, ये क्योंकि वो हाईएस्ट वो टेस्ट है। उसके बाद समझो आपने तीखा खाया, खट्टा खाया या कुछ और कड़वा खाया, वो आपको वो टेस्ट नहीं आएगी, क्योंकि मिठास की जो टेस्ट है वो हाईएस्ट है। इसलिए वो खाने के बाद कहीं बस बस अभी आपको मुझे अपना मुंह कड़वा नहीं करना है हाँ मेरा मुंह ठीक है अच्छा है, परंतु वो भी इंद्रियों का ही अल्पकाल का सुख है। पर बाबा ने तो हमें उनसे भी परे ले लिया। सन्यासी लोग इसमें फिर ये करते थे, महात्मा बुद्ध हमेशा उनके जो आप शिष्य देखेंगे ना उनके बारे में जो बताते हैं कि वो जाएंगे किसी के द्वार पर भाई भिक्षा भिक्षा, वो देखते भी नहीं है क्या डाला, खट्टा डाला, मीठा डाला, तीखा डाला, फीका डाला, क्या करेंगे, खा लेंगे देखने बिना, कुछ भी नहीं देखते। तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि ऐसे करो, क्या डाला क्या खाया, वो नहीं, भले क्योंकि हम ऐसा वैसा भी नहीं खाएंगे, हम तो अपने हाथों से बनाकर खाएंगे। वो लोग तो ऐसे नहीं करते ना, वो जो बनाने वाले किस वृत्ति से किस दृष्टि से बनाते हैं, तो वो भी बाबा कहते ध्यान देना होता है, भोग लगा करके खाना है, तो वो तो बहुत हमारे नियम है, ऐसा नहीं जो आया सो खाया, पेट ही भरना है, नहीं पौष्टिक भी खाना है, सात्विक भी हो, साथ साथ बाबा को भोग भी लगा हुआ हो, योग में भी बनाया हुआ हो, तो ये सब बातें ध्यान देते हैं। परंतु बाबा के भंडारे से जो मिले ये अच्छा नहीं अच्छा, बाबा हमेशा कई बार ना बाबा उसकी टेस्ट लेते थे, समझो सब्जी बनी वो टेस्टी सब्जी बनी तो फटाफट तो पतीला खा ली, और अगर इतनी टेस्टी नहीं तो कोई खाता ही नहीं ऐसे भी होता था। तो बाबा टेस्ट लेते थे कि जीव रस के कारण खाते हो क्या। तो क्या है कि अति इंद्रिय सुख माना बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया उसका आनंद ले रहे हैं, जो शांति हमें अनुभव हो रही है उसका आनंद ले रहे हैं, जो बाबा का प्यार पा रहे उसका आनंद ले रहे हैं, न कि इंद्रियों के सुख का आनंद। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। वो दिखाते हैं ना अपना चित्र दिखाते बाबा मुरलियों में, कई बार कहते हैं विष्णु जी लेटे हुए शेषनाग पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका पांव दबा रही है ना, बाबा की मुरली में भी कई बार आता है, तो लक्ष्मी जी देख रही है कि विष्णु जी आनंद मग्न स्थिति में इतने हलचल हो रही है, सागर में शेष नाग की छैया छाव है, तो भी वो आनंदित स्थिति में है। तो लक्ष्मी जी को क्या लगता है कि मैं इनका पांव दबा रही हूँ ना, तो उसका आनंद इनको अनुभव हो रहा नहीं। जैसे बहुत थके हुए पैर हो तो कोई हमारा पांव दबाता है तो कितना अच्छा लगता है, कोई यहाँ दबाता है तो कितना रिलैक्स हो गया है, अच्छा लगता है। तो लक्ष्मी जी को लगा कि मैं क्योंकि पांव दबा रही ना, इसलिए विष्णु जी बड़ा आनंदित हो रहे क्योंकि वो आनंद मग्न स्थिति में बैठे है ना, लेटे हुए। तो लक्ष्मी जी पूछ रही है कि आप इतनी आनंदित स्थिति में हो, क्या कारण है? तो विष्णु ने क्या जवाब दिया, मैं गीता के ज्ञान का रमण कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो दिखाते ना कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तो मैं गीता ज्ञान का रमण कर रहा हूँ, उस गीता ज्ञान का जो आनंद मुझे मिल रहा है वो अनुभव हो रहा है। और लक्ष्मी समझने में पांव दबा रही हूँ ना, इसीलिए उनको आनंद हो रहा है। तो ये तो इंद्रिय सुख है, और ज्ञान का जो आनंद है वो तो एक अलग ही चीज है। तो जब हम विचार सागर मंथन करने लगते हैं, बैठे हैं बहुत आनंदित हो रहे हैं, तो वो सुख और कोई पांव दबाए वो सुख, वो अंतर है या एक ही बात है? तो वो है अति इंद्रिय सुख, समझ गए अति इंद्रिय सुख का। फिर दूसरा प्रश्न क्या था, बेहद का वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य बाबा किसको कहते हैं? देखो दुनिया में हम देखते हैं दो एक्सट्रीम एंड्स है, या तो इतने भौतिकवादी जो बात मत पूछो, बिल्कुल कम्प्लीटली मटीरियलिस्टिक लोग जो विकारों में ही फंसे हुए हैं, विकार ही उनके लिए भगवान है सब कुछ अगर ये सोचे तो इतने भौतिकवादी जो संसार और ये भौतिकता और इसके सिवाय और कुछ भी कोई मेटाफिजिकल चीज है इस भौतिकता से ऊपर, उसका तो कुछ सोच भी नहीं है। तो एक और है बिल्कुल एक्सट्रीम मटीरियलिस्टिक भौतिकवादी, और दूसरी ओर है सन्यासी, एकदम सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, बस एक गुफा में बैठे हैं, ब्रह्म को याद कर रहे हैं। तो कहां वो एकदम दुनिया में फंसे हुए, और कहां एकदम सब छोड़ छाड़ करके बस, कहीं तो अलख निरंजन, अलख निरंजन समझते हैं ना, वो वस्त्र भी नहीं पहनेंगे नहीं। ये अभी मेला जो हुआ था कुंभ मेले, तो कितने नागे मिले हैं, कितने नागे, बाप रे, वो बार बार दिखाए टीवी पर ये उनका आकर्षण होता। तो देखो कुछ भी नहीं बिल्कुल, तो बाबा थोड़ी कहते कि ऐसे रहो। तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स बाबा मना करते हैं, बाबा ने ये मध्य मार्ग दिया है। तभी कहा ना सुबह छोड़ो भी कुछ नहीं लेकिन फंसो भी कहीं नहीं, जोड़ो भी नहीं नया, लेकिन जो है उसको निभाओ, क्योंकि हमको सब हिसाब किताब यहीं चुकतू करने, इसे छोड़ के कहाँ जाएंगे, छोड़ के गए तो याद आता रहेगा। हम एक मिसाल देते, हंसी की बात है, एक सन्यासी आया था, मैं किसी सेंटर पर थी तो कोर्स करा रही थी, तो एक सन्यासी आया कोर्स करने के लिए। तो बाबा तो कई बार मुरली में कहते ना कि सन्यासी से पूछो कि आपने सन्यास क्यों किया, आपका पहला जीवन क्या था, तो कभी जवाब नहीं, कभी नहीं बताएंगे। तो कहते हैं वो तो माता जी हम तो मर गए, पुरानी दुनिया से पुराने जन्म से मर गए, अभी तो ये नया जन्म है। तो मैंने एक ट्राई किया, तो सन्यासी को मैं कोर्स करा रही थी, वो क्या छोटा मोटा था, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपने सन्यास क्यों किया। तो क्योंकि मुझे मालूम था, किसी ने बताया था कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और फिर इसने सन्यास किया और अभी बिल्कुल सब छोड़ दिया है। तो मैंने ऐसे ही पूछा, आपने सन्यास क्यों किया? तो मुझे क्या जवाब दिया, मेरी पत्नी के कारण मैंने सन्यास किया। तो मैंने सोचा पत्नी बड़ी अच्छी होगी, वो भी बड़ी वैरागी होगी और उसके माना उनसे प्रेरणा मिली होगी, तो उसने भी सन्यास किया होगा, इसने भी किया होगा, पत्नी के कारण, कारण क्या था वो तो मालूम नहीं, तो मैंने अंदाजा ऐसे लगाया कि पत्नी के कारण सन्यास किया। तो मैंने कहा आपकी पत्नी तो बड़ी अच्छी थी जो आपने क्या नहीं कहता है, नहीं बहन जी मेरी पत्नी ऐसी निकली जो बात मत पूछो। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहा पहले ना जब पहले तो उनसे मेरा प्यार हो गया, खुलेआम बोल दिया, तो फिर आखिर शादी हुई। तो शादी क्या हुई, तो पहले जैसे ही आपस में मिलते थे तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, तो मैं नौकरी करता था लेकिन प्यार तो था तो मैं उसकी सब इच्छा पूरी करता था। अच्छा फिर शादी हुई तो उसकी इच्छाएं बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर बच्चे हुए तो और इच्छाएं बढ़ी, फिर अपने लिए बच्चों के लिए नहीं, मेरी माँ के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी फलानी के लिए, तो फिर नौकरी से थोड़ी होगा। फिर धंधा शुरू किया तो धंधा मेरा अच्छा था तो इसका लोभ और बढ़ गया, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं तो एक दिन इतना परेशान हो गया, मैंने कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, छोड़ो और छूटो। तो पत्नी को छोड़ के मैं रातों रात भाग गया, चला गया घर से ही मैं निकल गया। तो मैंने कहा अभी वो पत्नी कहाँ है, करा मैं क्या जानू कहा, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, घर वर उसको दे दिया, पता नहीं क्या किया होगा। तो पत्नी के कारण सन्यासी बन गया। तो मैंने कहा फिर उस कभी आपने फिर पीठ नहीं की कि बिचारी का क्या हुआ होगा, का वो अपना हिस कर्म, उसका कर्म, उसने मेरे मुझे संसार से वैराग्य दिला दिया। तो मैंने कहा वो तो आप सोचो आपका भाग्य है, हम तो उसको पॉजिटिव लिया, लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, छोड़ दो हा? नहीं, शुरू में यज्ञ जब रचा गया, सब बाबा ने स्थापना कराई, तो कितने सब माजिया जो बड़ी दादियां थी वो सब छोड़ करके भागी थी और बाबा ने उनको पना दी। लेकिन अभी कोई छोड़ करके आगे सेंटर पर बैठे तो बैठने देंगे आप, मधुबन बैठने देंगे, बाबा ने तो बिठाया ना शुरू में, आप हमको क्यों नहीं बिठाती हो। नहीं, वो बात वो समय अलग था, उस समय तो स्थापना होनी थी, उस समय फाउंडेशन डलना था, इसीलिए बाबा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इतनी माताएं कन्याएं, बाबा कराची चले गए तो वो हैदराबाद में थी, तो जब इनको मालूम पड़ा कि बाबा तो चले गए, अरे बाबा चले गए क्या, कैसे अब बाबा से कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने क्या किया, संगठन बनाया, रात को 12 बजे ट्रेन जाती थी और सवेरे 4 बजे हैदराबाद से कराची पहुंचती, जैसे बॉम्बे से पुणा ना, मतलब 3-4 घंटे का रास्ता। तो सब ने आपस में फैसला किया हम लोग रात को 12 बजे स्टेशन पहुंचेंगे। तो घर से छिप छिप करके निकल आए, छिप छिप करके सब ये दादियां अपने अनुभव सुनाती कैसे हम भागे। और जब सवेरा हुआ तो के मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, अरे पता ही नहीं कहाँ है। और यहाँ 4 बजे पहुंच गए बाबा के पास, बाबा हम तो वापस नहीं जाएंगे। अरे कैसे नहीं जाएंगे, कैसे आ गए, तुम्हारे घर वाले आएंगे यहाँ पर पूछने करने के लिए, तो क्या हम नहीं जाने वाले हैं, बाबा उनको कहेंगे निकल जाओ, निकल ऐसे निकाल देंगे क्या, नहीं तो फिर उनके घर में इन्फॉर्मेशन देते थे कि भाई ऐसे आपकी बेटी यहाँ है, आपका बेटा, आपकी पत्नी यहाँ है, तो वहाँ तो हंगामा हो गया हैदराबाद से, मेरे बाबा तो कराची में बैठे हैं। तो चलो जो 18 साल से ऊपर थे तो उनके लिए तो चलो वो कहा कि नहीं हम तो 18 साल से ऊपर है, हमारे माँ बाप कुछ भी नहीं कर सकते ना, 18 साल के ऊपर हो गए तो वो क्या बोलते हैं, हाँ बालिग हो गए, और 18 से पहले है तो सगीर है, तो जो 18 से कम थे उनको तो ले गए वापस, तो बाबा के ले जाओ ना, हमने तो बुलाया नहीं है, और जो बालिग थे वो कहे हम तो नहीं जाएंगे, अब बाबा उनको निकाल तो नहीं देगा। तो क्या है कि शुरू की बात दूसरी थी, पर अभी कोई अपना घर छोड़ के आके मैं सेंटर पर रहूं तो छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ वापस। घर ग्रस्त में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाना, छोड़ना नहीं है, परंतु बुद्धि में बसाना भी नहीं है। कैसे नहीं बसाना है, उनको बाबा का समझो, बस ये है बेहद का वैराग्य। ये तन भी मेरा नहीं है, ये तन भी बाबा का है, ये मन भी बाबा का है, धन भी बाबा का है, तो ये बाबा का समझने से बेहद का वैराग आएगा। मना जैसे कोई मेरा है ना तो मुंह आएगा, अब मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है एक अमानत के रूप में संभालने के लिए, तो उसमें मोह जाएगा, ध्यान रखेंगे पूरा, परंतु मोह नहीं जाएगा, क्योंकि पता है ये किसी और का है, ये किसी और का है, उसको वापस करना, उसको वापस करना है, मेरा नहीं है। तो ये तन मन धन बाबा का है, ये अंदर में इतना निश्चय हो पक्का, और उसका हम उपयोग कर रहे हैं बाबा के कार्य के लिए, बाबा की सेवा के लिए। धंधा भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, घर भी संभालेंगे, बच्चे भी संभालेंगे, पूरा परिवार संभालेंगे, सब जिम्मेदारियां भी पूरी संभालेंगे, लेकिन श्री मत की लकीर के अंदर कैसे, इसमें फायदा क्या होगा, कोई भी गलत काम उससे नहीं करेंगे, ये उसका फायदा है। श्री मत के विरुद्ध माना गलत हुआ, अभी जैसे कोई सिगरेट जाके पिए, अब हम तो नहीं पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे, इसलिए नहीं कि सिगरेट नुकसान करता है, पर इसीलिए ये धन भी बाबा का है, तो बाबा की आज्ञा के बिना हम श्रीमत का उपयोग नहीं, श्रीमत मना के बिना नहीं करेंगे। कई ऐसे होते हैं ना, एक बार एक व्यक्ति था, खूब सिगरेट पी रहा था, खूब सिगरेट, तो मैंने कहा इतना आप सिगरेट पी रहे हो, कितना आप धन खर्च कर रहे होंगे सिगरेट के पीछे, कितने का आता है, मैंने इसे पूछा, उसने कहा एक पैकेट इतने का आता है, कितने पैकेट रोज पीते हो, तो कहा कम से कम आठ पैकेट, आठ पैकेट तो बहुत होता है, तो हमने कितने का आता होगा, तो कहा कि हो सकता है 100 रुपए का, उस समय की बात। तो मैंने कहा 100 रुपए आप रोज सिगरेट पर खर्च करते हो, तो आपको लगता नहीं कि इतना हम खर्च करें, कहते क्या हुआ मैं कमाता हूँ ना, मैं कमाता हूँ तो अगर मैं ही कमाता हूँ, मैंने किसमें भी खर्च किया तो कौन मुझे रोकेगा, नहीं तो कमाता हूँ, हाँ भाई मैं किसे मांगता थोड़ी हूँ, मांग तो नहीं रहा हूँ ना जो मुझे कोई रोके, नहीं कमाता हूँ। अभी बाबा कहते भले कमाते आप हो, लेकिन वो धन आपका नहीं है, वो किसका है, बाबा का है। तो बाबा का धन है तो मैं श्रीमत के खिलाफ मैं इस धन का उपयोग नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसको बाबा कहते बेहद का वैराग्य, छोड़ना नहीं है पर सब कुछ करते, सब कुछ संभालते, जैसे खजांची कैसे होता है, सब कुछ कितना धन संभालता होगा, किसी बैंक में कैशियर होता है, कितना पैसा गिनती करता रहता है, कितना गिनती करता है, सारा दिन पैसा ही गिनती करता रहता है, लेकिन उसका मोह जाना चाहिए, जाएगा, जाना तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये जनता का धन है, जनता का धन है, इसका एक एक पाई का हिसाब किताब हमको देना है, एक पाई भी ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए। रात को पूरी मुरादी संभाल, मैंने शाम को जाने से पहले पूरा एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नहीं है, हमारा है तो चलो कैसे भी खर्च करो, हिसाब रखो न रखो सब चलता है। एक नर्स है, पेशेंट की कितनी सेवा करती है, कितनी सेवा करेगी, प्यार से सेवा करेगी ना, करना तो चाहिए प्यार से, पर मान लीजिए वो पेशेंट की मृत्यु हो गई तो क्या करेगी, रोती रहेगी, पेशेंट के रिश्तेदार रोएंगे पर वो थोड़ी रोएगी, उसने भले उसी ने सेवा की, रिश्तेदारों ने सेवा नहीं की, परंतु उसने फर्ज अदाई निभाई, लेकिन उसकी तकदीर क्या कर सकती है, तो रोएगी नहीं। चलो दूसरा पेशेंट है, उसने नर्स ने बहुत सेवा की और वो बहुत अच्छा हो गया, और डॉक्टर उसको कहता अभी तुम जा सकते हो घर, और नर्स को बता भी तो मैं घर जाऊंगा, नर्स इतनी खुश हो जाएगी, वाह मेरी मेरी मेहनत सफल हुई, क्योंकि मेहनत तो नर्स ने की, नर्स की उसकी दवाई की, उसका ध्यान रखा, तो इतना सब कुछ किया, पर मोह थोड़ी गया पेशेंट में, मोह गया क्या, तो मोह कहाँ जाता है, सब कहते मेरा मेरा बच्चा मेरा, तो मेरा है तो मैं जो चाहूँ सो करूँ, अब यहाँ मेरा नहीं बाबा का है, तो मैं जो चाहूँ सो करूँ नहीं। एक मैं मिसाल देते, एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रही थी, तो ट्रेन में ना मेरे पास में एक माता थी, उसका छोटा बच्चा था, मैं समझते 1 साल का होगा बच्चा, तो उसकी गोद में था, अभी मना नींद नहीं थी, ऐसे ही बैठा था, 1 साल का था, 1.5 साल का होगा, अब बैठे बैठे ना उसने पेशाब कर लिया माँ की गोद में, छोटा तो था ही, वो माँ को आया जो गुस्सा इतना मारे इतना मारे इतना मारे जो, और मैं मेरी से तो सहा नहीं गया, इतना मार रही है बच्चे को, छोटा सा बच्चा। तो मैंने कहा माता जी क्यों मार रही हो, इतना मार रही हो आप छोटे बच्चे को, क्या किया होगा? तो जैसे मैंने कहा माता जी क्यों मार रही हो, इतना गुस्सा तो था ही, बच्चे को मार ही रही थी, तो मेरे पर ही बरस पड़ी, तुम्हारा क्या जाता है मेरा बच्चा है, तुम्हारा क्या जाता है मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है तो मैं जो चाहू सो करो, मेरा बच्चा है, क्योंकि तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली, बच्चा तो मेरा है ना, तुम्हारा थोड़ी है। तो इसलिए मैं उसको तब कहूँ जब मेरा बच्चा और मेरे बच्चे को मारे, तो वो तो अपने बच्चे को मार रही है, परंतु मुझे दया आ गई बेचारे को क्यों मार रही है। तो मेरा है तो मैं जो चाहूँ सो करूँ, लेकिन बाबा ने हमें क्या ज्ञान दिया, मेरा नहीं है, किसका है? बाबा का है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, हमारे पास शिविर में कई प्रकार के लोग आते हैं, तो किसी ने ना एक माता को शिविर में भेजा, बड़ी दुखी थी, किससे दुखी थी, अपने बेटे से बहुत दुखी थी, एक ही बेटा, बहुत सालों के बाद जन्म बेटा, बहुत मान्यताएं मानी, चलो बच्चा हुआ, लेकिन वो बच्चा जो 20-22 साल का ही था तो बुरी संगत में आ गया, तो नेचुरली बुरी संगत में आदतें बुरी हो जाती है। अब माँ का इतना मोह, बच्चा जो मांगे वो माँ बेटा को दे, जो मांगे, हाँ जितना पैसा मांगे माँ देती जाए, और वो बुरे संग में बुरा होता गया। तो आखिर ये स्थिति आई, वो ड्रग्स भी लेने लगा, इतनी छोटी उम्र में सब कुछ करने लगा। तो पिता को जब पता चला तो वो तो बहुत नाराज हो गया, तो ये सब क्या है, तो माँ ने बिगाड़ा है उसका, परंतु माँ को भी फिर गुस्सा आने लगा, क्योंकि बच्चा देर से आवे ये हो, मतलब कई बातें थी। तो क्या हुआ कि गुस्से के कारण जो माँ थी ना, इतनी चिड़चिड़ी हो गई, जब भी बेटा सामने आए वो कुछ शराब पी के आए या कुछ, मर जा इसके मुख से निकलता था, और कुछ नहीं, इतना गुस्सा बेटे के ऊपर, और जितना बेटे के लिए के मर जा उतना वो ज्यादा पिए, और डिमांड करे पैसे, मतलब बहुत दीख जैसा हो गया, बहुत ही परेशान करे माँ को, तो बहुत दुखी होने रहने लगी। और एक ही बेटा, तो किसने उनको कहा कि जाओ तुम मेडिटेशन सीखो, आप माउंट आबू जाओ तो मेडिटेशन सीखो। एक दूसरी बहन थी, बड़ी दया थी उस पर, तो उसको लेकर के आई, तो मुझे मेरे से मिलाया। तो मैंने कहा कि देखो बहन जी, आपने जो बात है आपने कही ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ आप चाहती हो कि मेरा बेटा मर जाए? तो कहते नहीं, मेरा बेटा मर जाए, कहते नहीं बहन जी, मेरा बेटा कितनी मैंने मान्यताएं मानी, कितने व्रत रखे, ये किया वो किया, बेटा मिले, फिर तो भगवान ने दिया बेटा, फिर ये क्यों कहती हूँ मर जा, आप चाहती तो नहीं हो मर जाए, फिर ये पहले तो ये कहना बंद करो। तो क्या करूँ, रोने लग गई क्या करूँ, बहुत मानता नहीं है हमारा, सुनता नहीं है, बहुत तंग करता है, ये वो आदि। मैंने कहा कुछ भी करता हो आप पहले ये बोलना बंद करो, ये कर सकती हो? तो मैंने कहा, नोटबुक उसके हाथ में थी, डायरी पेन दी थी ना, मैंने कहा ये लिखो कि आज से मैं उसको मर जा ये कहना बंद करूंगी। बेचारी लिखने लगी आज से ये कहना बंद करूंगी। अच्छा, फिर दूसरी बात मैंने कही कि दूसरी बात है कि आप ये जो कहते ना मेरा बेटा, ये मेरा बेटा कहना छोड़ दो, ये भगवान का बेटा है, ये भगवान का बेटा है, ये शिव बाबा का बेटा, तब तक शिव बाबा का ज्ञान दिया था, ये शिव बाबा का, आपने तो भगवान से मांगा ना, तो आप कहते भगवान ने दिया, तो आपका थोड़े तो भगवान का है, तो आप लिखो ये बच्चा शिव बाबा का है, पहले तो मर जा ये बोलना बंद करूंगी, ये बच्चा शिव बाबा का है, लिखो, लिखने बैठी। फिर तीसरी बात, ये जैसे ही वो बच्चा आपके सामने आए आप उनके लिए ये सोचो, ये आत्मा बहुत अच्छी है, चेंज करो अपने विचार, ये आत्मा बहुत अच्छी है, लिखो, हाँ ये आत्मा बहुत अच्छी है, लिखती गई, जो मैं उसको बोलती गई वो लिखती गई। और फिर उसके फिर उसके बाद उसके उसको आप शुभ कामना दो, अंदर की भावना अच्छी रखी तो शुभ कामना दो। फिर बाबा को कहो, बाबा अब आप इस समस्या का हल करो, ये बोझ भगवान को दो, आप उसको सुधार नहीं सकोगे, आप ये जो बोझ है या बोझ महसूस करे ये भगवान को दे दो। शिव बाबा अब ये बच्चा आप संभालो, आपको ही ये समस्या हल करनी है, मैं तो नहीं कर सकती। अपने आप को अपनी बेबसी भगवान के आगे व्यक्त करो, अभिमान ही दिखाओ, मैं उसको बदल के रखूंगी, कोई नहीं बदल सकता ऐसे किसी को, भगवान को ये जिम्मेदारी दे दो। तो फिर उसने लिख दिया, हाँ बच्चे को सुधारने की जिम्मेदारी भगवान की है। अच्छा फिर मैंने कहा अच्छा बस ये चार बातें रोज आप पढ़ना, रोज इसको बाय हार्ट करना और अपने आप को बदलो, बच्चा अपने आप बदल जाएगा, आप मत बदलो। और एक महीने के बाद मुझे पत्र लिखना और बताना कि रिजल्ट क्या हुए। अब एक महीने के बाद पत्र उसने लिखा और क्या उसने लिखा, आश्चर्य की बात थी कि जैसे गई बिल्कुल बदल गई। ये तो बोलना बंद, मना मर जा बोलना बंद कर दिया। फिर ये बाबा का बच्चा है, ये बाबा का है, बहुत अच्छा है, बाबा आप ही संभालो, आप ही इसकी जिम्मेदारी लो, आप ही इनको ठीक करेंगे। और सचमुच इतनी बदल गई वो, और बच्चा भी देखे ये माँ तो बदल गई, तो माँ बदल गई तो बच्चा भी बदल गया। तो फिर ये पत्र में लिखा कि बच्चा तो बदल गया है, तो जादू हो गया, उसे सब पीना छोड़ दिया, ये सब करना छोड़ दिया और तो बहुत अच्छा हो गया। तो फिर मैंने इसको लिखा अभी उस बच्चे को ले आओ, मधुबन ले आओ। तो फिर एक दो मास के बाद उसको लेकर के आई। तो मैंने बच्चे से पूछा कि आप बदल कैसे गए, तो कहा मेरी माँ बदल गई ना। समझ गए ना, मेरी माँ बदल गई, तो माँ बदल गई तो बच्चा भी बदल गया, मैं भी बदल गया। मैं इसलिए ज्यादा करता था क्योंकि माँ बहुत गुस्सा करती थी, मत जा तो मैं कहती मैं भी करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। तो गुस्से से वो और गुस्से में हो गया, क्योंकि आजकल के जवान लड़के उनको कहना तो बड़ा मुश्किल, आजकल तो किसी में सहन शक्ति नहीं है। चलो ये तो फिर भी कह दिया, हाँ और करूंगा, कहीं तो ऐसे नाराज गुस्से में आ जाते हैं या अंदर में इतने निराश हो जाते हैं तो जाके के सुसाइड भी कर लेते हैं, कई हमने देखे यंगस्टर्स, क्योंकि सहन करने की ताकत नहीं है आजकल किसी में भी नहीं है। तो फिर हमको ही बदलना है, बस यही हम कैसे बदलेंगे, ये चार बातें, ये चार कदम है। पहला कदम कि कोई भी मुख से गलत शब्द जो आप नहीं चाहते हो वो बोलना नहीं है, बोलना ही नहीं है, चुप। दूसरा क्या करना है, ये बाबा का है मेरा नहीं। तीसरा शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ भावना, जो बाबा ने आज का मनसा सेवा, ज्ञान नहीं समझेंगे वो, मुख से ज्ञान सुनाएंगे कभी नहीं समझेंगे। और चौथा जिम्मेदारी किसको देनी है, बाबा को, ये मेरा तो है ही नहीं ना, मेरा थोड़ी है जो मेरी जिम्मेदारी है, पर ये करेंगे मिराकिल हो जाएगा, आप अनुभव करेंगे, ठीक है ना। तो ये है बेहद का वैराग्य, वैराग्य माना छोड़ना नहीं, फंसना भी नहीं, जोड़ना भी नहीं, निभाना भी है, पर परिवर्तन करना अपने विचारों, ठीक है, समझा बेहद का वैराग्य क्या होता है। अब तीसरा प्रश्न क्या था, दस हो गया, हाँ जी, हाँ निर्मल बहुत अच्छी चीज है, निर्मल माना पवित्र, निर्मल का अर्थ होता है पवित्र, कोमल माना नाजुक, कोई फूल होता है ना हाथ लगा जिसे छुई मुई, वो हाथ लगाते ही वो मुरझा जाएगी, हाथ किसी फूल को हाथ लगाओ पत्तियां निकल गई, ये कोमलता। तो कोमल होना अच्छा नहीं, किसने कुछ कह दिया, इतना सेंसिटिव होते हैं, इतना सेंसिटिव जो अंदर ही अंदर सारी रात उनको नींद नहीं आएगी, ये कोमलता है। और निर्मलता माना पवित्रता, शुद्धि, जैसे उसको लगा ही नहीं, कमल का फूल निर्मल है, निर्मल है, उसके ऊपर पानी लग ठहरता नहीं, वो निर्मलता है। तो कोमलता माना जल्द, इतना नाजुक है, फ्रजाइल जिसको कहेंगे ना, टूट सकता है। अब इसको कोमलता को कोई पॉजिटिव भी लेते हैं, जैसे फूल माना बड़ा सॉफ्ट होता है, उसको कोमल भी मानते हैं, तो वो किस हिसाब से उसको लेते हैं, पर बाबा जब कोमलता बोलते हैं माना नाजुकपना, सेंसिटिव बहुत, निर्मल होना अच्छी चीज है। ठीक है, चलो ओम शांति। 10:10 हो गया, सुबह से रात्रि तक थकते तो नहीं हो? स्टूडेंट लाइफ का अनुभव अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा। चलो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।